नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि जब से यूपीआई और सिंगापुर के पेनाओं के बीच समझौता हुआ है, कई अन्य देशों ने भी भुगतान के लिए ऐसा समझौता करने की इच्छा जाहिर की है। गवर्नर ने बताया कि कम से कम आधा दर्जन देश ये समझौते करेंगे। यहां आरबीआई के डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह की घोषणा करते हुए दास ने कहा कि यूपीआई पेनाओ के समझौते को 10 दिन हुए हैं। इस दौरान सिंगापुर से पैसा भेजने के 120 और सिंगापुर को पैसा भेजने के 22 लेन देन हुए हैं। दास ने कहा, हमने अपनी भुगतान प्रणाली के अंतर्राष्ट्रीयकरण और भारत सिंगापुर के द्रुत भुगतान तंत्र का सीमा पार लिंकेज के लिए कई कदम उठाए हैं। राजधानी के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत क्षेत्र के सबसे अच्छे और साफ सुथरे हवाई अड्डों में से एक चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने इंदिरा गांधी हवाई अड्डे को वर्ष 2022 के लिए हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता के मामले में सबसे अच्छा माना। उसे ये सम्मान 4 करोड़ सालाना यात्रियों वाले वर्ग में दिया गया। इसके अलावा दिल्ली स्थित हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा भी चुना गया। हवाई अड्डा परिचालकों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ACI ने ये चयन किया है। भारतीय मानक ब्यूरो ने सार्वजनिक सुरक्षा, संपत्ति एवं पर्यावरण के लिए खतरनाक एवं नुकसानदेह उत्पादों के परिवहन के दौरान सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों में खतरनाक एवं नुकसानदेह उत्पादों की पैकेजिंग, साज संभाल एवं परिवहन के दौरान ध्यान रखे जाने लायक एहतियाती उपायों का जिक्र है। इन मानकों का ध्यान वाहन मालिकों, परिवहन एजेंसियों, ठेकेदारों, ट्रक ऑपरेटरों एवं ड्राइवरों को रखना होगा। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक BIS ने हाल ही में खतरनाक वस्तुओं के परिवहन संबंधी दिशा निर्देश 2023 जारी किए हैं। इन मानकों को परिवहन सेवाओं की अनुभाग समिति ने तैयार किया है। इन मानकों का मकसद खतरनाक एवं नुकसानदेह वस्तुओं के परिवहन के समय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सख्त मानदंड तय किए गए हैं। जमीन, पूंजी और निर्माण की ऊंची लागत के साथ साथ अन्य आर्थिक अनिश्चितताओं के कारण भारत में रियल एस्टेट परियोजनाओं का विकास आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं रह गया है। टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं CEO संजय दत्त ने ये बात कही। दत्त टाटा हाउसिंग के भी प्रमुख हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और न्यायपालिका को उन सभी अंशधारकों को जवाबदेह बनाना चाहिए जो चीजों को आसान बनाने के लिए रियल एस्टेट परियोजना के अनुमोदन और विकास के काम में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट परियोजनाएं गैर लाभप्रद होने के कगार पर हैं। परियोजनाओं को गैर लाभप्रद बनाने वाले कारकों के बारे में पूछे जाने पर दत्त ने कहा, रियल एस्टेट को भारत में बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। सबसे पहले भूमि का अधिग्रहण करने के लिए NCR, मुंबई और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों में परियोजना लागत के प्रतिशत में से लगभग 50% से 80-85% बैठती है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को कहा कि UPI के माध्यम से भुगतान के दैनिक लेनदेन में एक साल में 50% का उछाल आया है और ये 36 करोड़ के आंकड़ों को पार कर गया। फरवरी 2022 में ये आंकड़ा 24 करोड़ था। यहां RBI मुख्यालय में डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह की शुरुआत करते हुए गवर्नर ने बताया कि मूल्य के लिहाज से देखें तो ये लेनदेन 6.27 लाख करोड़ रुपए के बैठते हैं। फरवरी 2022 में दर्ज 5.36 लाख करोड़ रुपए से ये आंकड़ा 17% ऊंचा है। उन्होंने कहा कि कुल मासिक डिजिटल भुगतान लेनदेन पिछले 3 माह से हर बार 1,000 करोड़ रुपए के आंकड़ों को पार कर रहा है। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ऑफेरल ने सोमवार को कहा कि अडानी समूह उनके देश में सफल कारोबार का संचालन करता है और वह सबसे बड़ा भारतीय निवेशक बना हुआ है। ऑफेरल ने यहां संवाददाता के साथ बातचीत में कहा, अडानी समूह पर आई हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से उपजे हालात पर भारतीय नियामकों को गौर करना है और समूह द्वारा अपना ऑस्ट्रेलियाई कारोबार बंद करने की कोई भी रिपोर्ट नहीं है। ऑफेरल ने अडानी समूह के बारे में पूछे गए एक सवाल पर कहा, गौतम अडानी के ऑस्ट्रेलिया में किए गए निवेश पूरी तरह सक्रिय हालत में हैं और स्वच्छ ऊर्जा एवं कोयला जैसे संसाधन मुहैया करा रहे हैं। मैंने ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं देखी कि ऑस्ट्रेलिया में उनका परिचालन ठप हो गया। वह अब भी ऑस्ट्रेलिया में भारत से निवेश करने वाले महत्वपूर्ण निवेशक हैं। गौतम अडानी की अगुवाई वाला अडानी समूह ऑस्ट्रेलिया में एक बंदरगाह टर्मिनल के अलावा कोयला खदानों और सौर ऊर्जा परियोजना का भी परिचालन करता है। मैक्लूरेन स्ट्रेटेजिक वेंचर्स के शीर्ष कार्यकारी हितेश सोठिया अरबपति मुकेश अंबानी के समूह में शामिल हो रहे हैं। वह वहां वित्तीय सेवा कारोबार का नेतृत्व करेंगे, सूत्रों ने ये जानकारी दी। इस बारे में टिप्पणी के लिए सेठिया से संपर्क नहीं हो सका, जबकि रिलायंस को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं आया। हालांकि सूत्रों ने कहा कि सेठिया के जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में शामिल होने की संभावना है। हालांकि सूत्रों ने ये नहीं बताया कि वह किस पद पर जा रहे हैं। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार सेठिया फिलहाल यूरोप मैक्लूरेन स्ट्रेटेजिक वेंचर्स के प्रमुख हैं। पिछले साल अक्टूबर में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा था कि वह अपना वित्तीय सेवा इकाई को अलग करेगी और इसे शेयर बाजारों में सूचीबद्ध करेगी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।